సతోమా సద్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యుర్మా అమృతం గమయ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్ దుఃఖ భాగ్ భవేత్. జననీం శారదాం దేవీం రామకృష్ణం జగద్గురుం పాదపద్మే తయో శ్రిత్వా ప్రణమామి ముహుర్ముహు. శాంతి మంత్ర. ఓం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. ये कठोपनिषद में हमने जैसे देखा कि दो अध्याय है, दोनों अध्याय में तीन तीन वल्लियां है, मतलब तीन तीन प्रकरण है. अब हमने प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली तक, मैंने प्रथम अध्याय की दो वल्लियां हमने समाप्त कर ली है. अब प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली शुरू हो रही है और यहां से यमराज कहते हैं, महाराज प्रारंभ करता हूं. अब यहां हाँ थोड़ा सा तृतीय वल्ली का प्रारंभ हो रहा है और तृतीय वल्ली के पहले प्रथम दो वल्लियों में हमने जो कुछ बातें देखी अब तक कि जैसे नचिकेता के जो पिता है वाजिश्रवस, ये यज्ञ करते हैं, यज्ञ में उचित दान न करके सब यूजलेस ज्ञान दान जिसको कहते हैं कि ऐसे गाय बांट रहे हैं जिन्होंने घास खा लिया है, आखिरी का पानी पी लिया है और कभी फिर प्रजनन करने की शक्ति कुछ बची नहीं है. माने जो एक बोझ जैसा है, जो हमारे घर के अटाला अगर हम किसी को दे देते हैं तो क्या वो दान हो गया? तो ये अटाला दान जैसा है, इस प्रकार का करते. और इसको देखकर उनके पुत्र के मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा के कारण वो सोचता है कि इससे तो मेरे पिताजी का बड़ा नुकसान होगा, वे तो निरानंद लोक में जाएंगे. तो पिता के कल्याण हेतु से उन्होंने पिता से पूछा कि आपने मुझे किसको दान दिया, क्योंकि मैं भी आपका पुत्र धन हूं. और पिता ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, दो बार कहा ध्यान नहीं दिया, तीसरी बार जब फिर से पूछा तो क्रोध में आकर कह दिया जाओ मैंने तुम्हें मृत्यु को दिया. तो मृत्यु को दिया, तो इसमें श्रद्धा है नचिकेता में और ये उत्कृष्ट अधिकारी है. तो ये सोचता है कि अगर पिता ने मुझे यमराज को दिया है तो यमराज का कुछ तो जरूर कार्य है, इसलिए मुझे यमराज के पास जाना चाहिए. और अगर मैं पिता की आज्ञा नहीं मानता तो प्राचीन परंपरा जो है वो परंपरा को भी मैंने नहीं निभाया और मैं कुछ लोगों से तो अच्छा हूं, श्रेष्ठ हूं, बहुनामे भी प्रथम हो, तो कुछ लोगों में मैं श्रेष्ठ हूं. हाँ मेरे भी आगे कुछ लोग होंगे लेकिन मैं निकृष्ट तो नहीं हूं. तो उचित तो यही है कि मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जिससे पिता का कल्याण हो वह करना. और इसलिए हम देखते हैं कि वो यमलोक में जाता है. यमलोक में जाने से देखते हैं कि यमराज वहां नहीं है, ब्रह्मलोक चले गए हैं. अब ब्रह्मलोक गए हैं तो नचिकेता को वो यमराज के मंत्री उसे कहते कि अब महाराज आप आइए, क्योंकि यह सदैव जाता है. नचिकेता ऐसा कहा है कि यह सदैव वहां पहुंच जाता है. अब ये सदैव पहुंचा तो ये बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र है, ऐसे तो मंत्री कहते कि आप आइए, जब तक यमराज नहीं आते आप विश्राम कीजिए, अन्न ग्रहण कीजिए. ये कहता नहीं, यमराज जब तक नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं कर सकता. और वो तीन दिन तक यमराज के दरवाजे में ही खड़ा रहता है. जब तीन दिन के बाद यमराज आते हैं तो मंत्री समझाते कि ये बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है और तेजस्वी ब्राह्मण ये अतिथि अग्नि स्वरूप होता है और ये अगर आप इसको शांत न करेंगे तो अतिथि का उचित सम्मान न करने के कारण आपका ये लोक नष्ट हो सकता है. तो इसे अच्छा है कि आप इसे संतुष्ट कीजिए. यमराज भी तो यमराज है, यमधर्म है, धर्मराज है, वे तो समझ गए. और उन्होंने बालक के पास जाकर उसे कहा कि देखो मेरे यहां नहीं रहने के कारण तुम तीन दिन तक यहां मेरे आने की प्रतीक्षा करते रहे, तीन रात्रि तुमने उपवास रहकर यहां मेरी प्रतीक्षा की है, तीन रात्रि के तीन वरदान मांगो. और हम देखते हैं कि नचिकेता ने पहले वरदान में मांगा अपने पिता की शांति, क्योंकि पिता थोड़े नाराज तो हुए थे क्योंकि पिता ने जब कह दिया जाओ यमराज को दिया, और बाद में पछतावा करने लगे, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने तो क्रोध में आकर ऐसा कह दिया था, लेकिन कहना उचित नहीं था लेकिन हो गया। तो पिताजी थोड़े नाराज भी हो गए, दुखी भी हो गए हैं। तो पिताजी को मेरी शांति मिले, वे मुझे प्रसन्न होकर पहचाने, मैं यमराज यमलोक से वापस जा रहा हूं, तो मुझे वे अन्यथा न ले, क्योंकि आज तक यमलोक से कोई वापस नहीं गया है, लेकिन आपकी कृपा से मैं वापस जाऊंगा। मन नचिकेता ने देखिए कितना बुद्धिपूर्वक पहला वरदान मांगा है कि मैं आपसे जो कुछ मुझे चाहिए वो लेके मैं वापस जाऊंगा, और मेरे पिता मुझे पहचाने, और पिता की प्रसन्नता हो गई। अब दूसरे वरदान में जो उत्कृष्ट साधक है, मुमुक्षु लोग है, जो कि स्वर्गलोक की कामना करते हैं, ऊंचे ऊंचे साधकों के मन में भी ऊंचे ऊंचे लोगों की भोगों की प्राप्ति की इच्छा रहती है, तो उसके लिए नचिकेता ने एक ऐसे अग्नि का ज्ञान मांगा, माने एक ऐसे यज्ञ का ज्ञान मांगा जिससे कि वो श्रेष्ठ उच्च ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाए, जहां जो सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक हमारे यहां माना गया सबसे श्रेष्ठ लोक है वो, तो ऐसा अग्नि ऐसा यज्ञ जिसे कि ये जो सूक्ष्म भोग जो चाहते हैं, जो सूक्ष्म भोग चाहने वाले हैं, उनको उस अग्नि की उपासना करके वो श्रेष्ठ लोक को वो जाए। अब इसका भी तात्पर्य क्या है कि जब तक जीव पूरे भोगों को भोग कर तृप्त नहीं होता, तब तक उसके अंदर सही सही वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। और कहते हैं कि जीव कितने बार मरता है, स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग के भोग भोगता है, फिर यहां आता है, फिर ऐसा करते करते ही उसके जीवन में एक विरक्ति या वैराग्य की उत्पत्ति होती है, और फिर वो ये मैं कब तक ऐसे स्वर्गलोक में जाऊंगा यह सोचता है। जब तक स्वर्ग के भोग जीव नहीं भोगता, आत्मज्ञान की तरफ या मुक्ति मोक्ष की तरफ जीव का ध्यान नहीं जाता, ऐसा शास्त्र कहते हैं, महापुरुषों की यही बात है कि जब तक जीवन में पूरी तृप्ति नहीं आती। इसलिए तो हम देखते हैं कि कोई भी भोग अगर एक बार खाने से तृप्ति होती तो आज बहुत बढ़िया भोजन कर लिया, शाम को मुझे भोजन करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कल फिर से वही चीज खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, फिर से उन्हीं भोगों की तरफ मन जाता है। तो ये जो स्वर्ग के जो सूक्ष्म भोग आदि है, ये जो इंद्र चंद्र वरुण देवता आदि है, ये सब कैसे बनते हैं, ये भोगों की इच्छा से ही स्वर्ग लोगों को प्राप्त हुए। यमराज भी यहां कहते हैं कि देखो मैंने भी ब्रह्मलोक प्राप्ति कर ली, लेकिन ब्रह्मलोक की प्राप्ति में मैंने समाधान मान लिया, इसलिए मैं यमराज बन गया हूं, मैंने उसके आगे जाने के लिए मेरी भी मैंने उतना वैराग्य इतना श्रेष्ठ वो विरक्ति मुझ में नहीं थी, ये नचिकेता को उन्होंने कहा है यमराज ने। माने ये देवता जो बन जाते हैं, इसलिए तो हमारे यहां कहा है कि ये देवता भी क्या है, कुछ समय तक अपना अधिकार चलाते हैं और फिर से आके पृथ्वी में इनके उन्हें भी जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए वो श्रेष्ठ अग्नि का ज्ञान भी नचिकेता को यमराज ने दे दिया, और फिर यह नचिकेता की एक उत्कृष्ट योग्यता देखकर कहा कि ये अग्नि तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, इसके त्रिनाचिकेत उसको नाम दे दिया वो यज्ञ को, उस अग्नि विद्या को, और एक उसको एक माला भी एक विशेष रूप से अर्पण कर दी, भेंट कर दी कि ये माला भी तुम रखो। अब कहा तीसरा वरदान मांगो, और हमने देखा नचिकेता ने तीसरा वरदान में पूछा कि ये यम प्रति विचिकित्सा मनुष्य, कि ये जो मृत्यु के बाद कुछ लोग कहते हैं कि कुछ रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं रहता। अब ये शास्त्र में ना सभी शास्त्रों का निचोड़, ये विशेष करके कठोपनिषद में हम देखते हैं कि विस्तार में कहा गया है बहुत सी बातें, सभी उपनिषदों में इस प्रकार इतना विस्तार से नहीं कहा है। तो बहुत बहुत बार कुछ लोग ये उपनिषद में हम देखते हैं कि जिसमें ये जो दूसरे षट दर्शनों की कुछ जैसे न्याय है, फिर वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, इसकी भी कुछ बातें काटने के लिए या नैयायिक जैसा कहते हैं वो बात सत्य नहीं है, वेदांत की दृष्टि से ऐसा है, इसलिए तर्क से यह नहीं जाना जाता आदि आदि के लिए कुछ लोग इसमें इस प्रकार भी आ जाते हैं। ये भाष्यकार इसको समझाते हैं, भाष्यकारों की तो विशेष ज्ञान होता है, और आचार्य तो शंकराचार्य तो ब्रह्मज्ञानी और अवतारी पुरुष थे, तो उन्हीं के आधार पर बहुत हम लोग भाष्य देखते हैं जिसमें ये समझाते हैं कि ये नैयायिकों का जो एक आक्षेप होता है उसको काटने के लिए इस प्रकार का श्लोक इसमें आया है, इस प्रकार कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य ये कि कभी कभी लगता है कि रिपीटिशन है, या ये इसको क्यों समझा रहे हैं, ये क्यों आया। इसका और भी एक कारण ये होता है कि जैसे हमें इस बहुत माने बहुत्व का ज्ञान है, इस बहुत्व से हमें एकत्व का ज्ञान देना उपनिषद को, आत्मा वन विदाउट सेकंड रियलिटी, एकमेवा द्वितीय ब्रह्म, ऐसा है। एकमेवा द्वितीय का तात्पर्य कि केवल वह एक ही है, वहां जानने वाला और जाना जाने वाला ऐसा दूसरा नहीं, कहीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विषय विषयी ऐसा कुछ भी नहीं है, भेद बिल्कुल किसी प्रकार का स्वगत स्वगत भेद नहीं है, जो मतलब बाहर एक भेद बाहर का होता है और एक स्वगत भेद होता है, मतलब अंदर का ही भेद होता है उसका, कि जाति एक ही है लेकिन फिर भी उसमें ऐसा ऐसा है, ऐसी बहुत सी बातें देखी जाती है। पक्षी, पक्षी बोलने से केवल पक्षी नहीं, कितने प्रकार के पक्षी होते हैं। चिड़िया, चिड़िया बोलने से हम बोल सकते हैं कि हाँ चिड़िया माने बहुत प्रकार की चिड़िया होती है, लेकिन कितने अलग अलग प्रकार है उसमें। ऐसे इसमें ये कुछ भी भेद नहीं है, सब्जेक्ट बोल के जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनकर यहां जगत में दिख रहा है। इसीलिए तो ये वेदांत या आत्मतत्व हम सबको मालूम है, भारत में तो सबको ही मालूम है कि आत्मा, हम आत्मा है बोल देते हैं, कोई भी बोल देता है यहां मैं आत्मा हूं। लेकिन क्या आत्मा बोलने से आत्मा का वो बोध होता है, आत्मज्ञान होता है? नहीं। ये जानना एक बात अलग है बुद्धि से, सब लोग भले ही नहीं बोलते लेकिन अधिकतर लोग भारत में आराम से बोलते हैं मैं आत्मा हूं। तो लेकिन आत्मा इतना गूढ़ है, कितना गूढ़ है, तो समझाएंगे कैसे। एक दृष्टांत देते हैं इसका कि जब हम थिएटर में गए, सपोज ये थिएटर है, और जब थिएटर में हम अंदर प्रवेश करते हैं और खेल चालू हो गया है, देखे कि स्क्रीन पर कुछ चित्र दिख रहे हैं हमें, और कोई ऐसा आदमी जो जिसने कभी थिएटर देखा ही नहीं है और पहले आ गया और देखा कि चित्र चल रहे हैं और चित्र देख लिए, और चित्र देखने के बाद में जब इंटरवल होता है तो इंटरवल के पहले वो बाहर चला गया और फिर इंटरवल के बाद में फिर से चित्र शुरू हो गया है, उसने कहने का तात्पर्य पर्दा देखा ही नहीं है कि जिस पर्दे पर वो चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो उसे क्या लगता है कि सिनेमा माने चित्र वाला ही। अब उसको जब कोई कहता है कि तुमने देखा पर्दा कैसा है देखा, तो कौन सा, हाँ पर्दा माने वही ना, वहां वो आदमी था, वो पहाड़ था, वो नदी में कूद रहा था। अरे नहीं नहीं, पर्दे में कुछ नहीं था, पर्दे पर तुम चित्र देख रहे थे। कहां पर्दा कहां है, उसने पर्दा मालूम ही नहीं, क्योंकि वो जब प्रवेश किया तब चित्र देख रहा था, इंटरवल के समय वो चला गया था, फिर आया तो फिर चित्र ही देखे उसने, उसको पर्दा मालूम ही नहीं कि जिस पर्दे पर चित्र दिखाई दे रहे हैं पर्दे का ज्ञान नहीं है। वही स्थिति हम लोगों की है। ये जो पूरा ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो खेल चल रहा है, ये पूरा जिस आत्मा रूपी पर्दे पर विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, ये जो शंकराचार्य का दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है ना, वो ये आत्मा रूपी पर्दा के ऊपर ये पूरा ये चित्र दिखाई दे रहा है जागृत स्वप्न सुषुप्ति का। और कैसा दिख रहा है, ये सत्य दिख रहा है, जागृत सत्य है। अब कोई बोलेगा कि ये सत्य नहीं है, अब सत्य क्या है इसमें, इसमें सत्य ये है कि इसका आधार सत्य है इसलिए ये सत्य है, एज इट इज सत्य नहीं है, एज इट इज ये जगत सत्य नहीं है, जागृत जगत। वैसे ही स्वप्न, जब तक हम स्वप्न देखते हैं तब तक स्वप्न सत्य है, जैसे हमने आंख खोल दी या स्वप्न स्वप्नावस्था से बाहर चले आए, स्वप्न मिथ्या हो जाता है, नहीं रहता है। स्वप्न के परे हम सुषुप्ति में चले जाते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं तो हमें कुछ बोध नहीं होता, वहां कुछ द्वैत नहीं है, कुछ अनेक माने भेदाभेद कुछ भी नहीं है वहां। लेकिन फिर भी वहां जहां हम कुछ भी नहीं जानते, किसी नाम रूप को नहीं पहचानते, फिर भी हम ये जानते हैं वहां ऐसा कोई है जो कहता है कि मुझे आनंद आया, मैं सुख से सोया, कौन कहता है? वहां तो अज्ञान था पूरा, माने ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सुषुप्ति ये तीसरी अवस्था है जो कारण अवस्था है, वहां पर भी कोई है कि जो ये अज्ञान को भी जानता है, माने उस अवस्था में कोई है जिसने कुछ अनुभव किया है, भले वहां जगत नहीं था, यहां इसमें तो मैं है, स्वप्न में भी एक मैं होता है, जागृत अवस्था में एक मैं होता है स्थूल मैं, स्वप्नावस्था में भी एक सूक्ष्म मैं होता है, कहते ये माया जगत है वो स्वप्न जगत है, स्वप्न जगत का एक स्वप्न का दृष्टा होता है, कौन होता है? मन ही वहां वो दृष्टा बन जाता है, मन ही एक रूप ले लेता है, मन ही पूरा विश्व बना लेता है, जैसे मन ही वहां मैं बनता है और मैं ही वहां दृश्य जगत भी बनता है। स्वप्न में हम यही नहीं देखते, हम कभी कभी केवल अपने को मैं मान के देखते हैं स्वप्न में। ये स्वप्न में जो मैं होता है वो कौन होता है? वो भी मन ही होता है। और फिर स्वप्न में जिस जगत में हम खेलते हैं जहां, वो भी कौन है? मन ही है। स्वप्न में जगह, यहां से हम बंबई चले गए तो बंबई शहर कहां से आया? मन ने बंबई शहर का रूप ले लिया। फिर बंबई शहर में घूमने वाला जो मैं रहता है वो क्या ये मैं है? नहीं, ये मैं तो सोया है, यहां ये जागृत का मैं सोया है। फिर स्वप्न में दूसरा एक मैं बन गया है, वो कौन है? वो भी मन ही बना है। मैंने एक ही मन ने सब्जेक्ट भी मन बना है, ऑब्जेक्ट भी मन बना है। यहां ये तो हमें समझता है और कहते हैं ये स्वप्नावस्था ईश्वर ने इसलिए निर्माण की कि हम इसे समझे। जैसे स्वप्न में होता है यथा स्वप्ने तथा जागृति, जागृति में भी यही है। जिसने ये जागृत बनाया है वही ये जागृति बनकर खेल रहा है और वही ये जागृति में जान रहा है। यहां जानने वाला कौन है? शरीर नहीं, मन नहीं। मन के भी पीछे, क्योंकि मन सुखी है मन दुखी है ये कौन जानता है? कोई और है। तो ये जानने वाला कोई और है, इसलिए वो जानने वाले को हम जानना चाहते हैं। देखो कितना बड़ा प्रश्न है। जिससे हम जानते हैं उसे हम नहीं जानते। वो जानने वाला यहां जो है, मन शरीर बुद्धि इन सब को जानने वाले, मेरी मेरी बुद्धि में, अरे मेरी बुद्धि कहां खो गई थी, अरे मेरे मन बुद्धि में कैसे विवेक नहीं आया, मैं मेरी बुद्धि को जान रहा हूं। तो बुद्धि के पीछे भी कोई ऐसा तत्व है, ऐसी कोई एक सत्ता है कि जो बुद्धि को भी जान रही है। तो बुद्धि को जानने वाली सत्ता, मन को जानने वाली सत्ता और इंद्रिय और ये स्थूल पंच महाभूत, इनको सबको जानने वाली जो सत्ता है उसको हमें जानना है। अब ये कितना कठिन है, इसलिए विभिन्न प्रकार से इसे समझाते हैं। अब बहुत बार इसलिए रिपीटेशन लगता है हमको, लेकिन हमारे जो अनुभव है जन्म जन्मांतर सैकड़ों लाखों करोड़ों जन्म जीव के होते हैं और वो कितना कुछ करके आता है और करते करते उसकी एक जो समझ आती है, साधक की जो एक समझ आती है, तो वो समझ विभिन्न प्रकार की होती है। इसलिए भी हम देखते हैं कि शास्त्र में बहुत विभिन्न प्रकार से समझाते हैं। अब जैसे यहां पर ये दूसरी वल्ली में, पहले अध्याय के दूसरी वल्ली दूसरी वल्ली में देखते हैं कि इन्होंने बहुत सी बातें यमराज ने कही है नचिकेता को, यहां से जो शुरू किया इन्होंने दूसरी वल्ली। ये अन्न श्रेयो अन्यतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः तयो श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते थाद्य उग्रेयो वृणीते। ऐसा कह के यहां से जो उन्होंने शुरू किया है, और हम देखते हैं कि तृतीय वल्ली के पहले तक ही उन्होंने अब परमात्मा की महिमा भी बता दी है उन्होंने द्वितीय वल्ली में ही। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह। माने ये ब्रह्म के ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों कैसे है? शाक और भात है। अब ये ब्राह्मण और क्षत्रिय बोलने का तात्पर्य यहां है कि ये दोनों बड़े श्रेष्ठ और पावरफुल दोनों अवस्था, ये ब्राह्मण अवस्था और क्षत्रिय अवस्था जो है, इनके हाथ में एक तो विद्या और पूरा ज्ञान इन्हीं के पास रहता है। लेकिन ये भी दोनों वर्ण कैसे हैं? ये वर्ण भी ब्रह्म के कहते हैं, ये ओदन है उसके लिए। कहने का तात्पर्य यह है, ये क्षत्रियत्व का अभिमान, ब्राह्मणत्व का अभिमान, ये ही इसके सामने कुछ नहीं है। वहां जाने से ये चारों वर्णों के परे चले जाते हैं, क्योंकि वर्ण भी इस अविद्या में ही है। हमने देखा था इसमें अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, ये जो कहा था कि अज्ञान में क्या होता है, थोड़ा सा जानने से अगर हम इसको समझ लिया ऐसा जब कहते हैं, और बिना जाने तो दोनों की गति क्या होती है? एक अंधा जब दूसरे पांच अंधों को कहते हैं चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, तो ये सभी गड्ढे में गिरते हैं। इस प्रकार ये होता है। क्यों? ये कहने का तात्पर्य है कि ये इतना सूक्ष्म है इसकी गति, और इसकी सूक्ष्म गति कैसी है? क्योंकि ये वास्तविक जानने वाला है जिसके आधार पर सब कुछ जाना जाता है। अब ज्ञान इसका स्वरूप कैसा है? ज्ञान, ये ज्ञानमय है, स्वयं ही इसमें ज्ञान है। अब हमें ये जल्दी धारण इस धारणा इसकी हम नहीं कर सकते। जैसे एक वस्तु है, वस्तु पहले कि वस्तु का ज्ञान पहले, ये माइक पहले कि माइक का ज्ञान पहले, कोई भी बोलेगा कि वस्तु है इसलिए वस्तु का ज्ञान है, नहीं, ज्ञान है इसलिए ये वस्तु है। ज्ञान के आधार पर वस्तु रहती है, क्यों, वस्तु चले जाने पर भी ज्ञान रहता है, और ज्ञान चला जाए तो वस्तु की कोई कीमत नहीं, वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आपका ज्ञान चला जाए तो वस्तु आपके सामने है फिर भी कौन जानेगा, लेकिन अगर ज्ञान है वस्तु चली गई तो भी ज्ञान रहेगा। तो पहले क्या है, पहले ज्ञान है। क्यों है पहले ज्ञान, क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है, ये आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है, सत चित आनंद, जो चित जिसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप। अब ऐसे ऐसी वस्तु को समझाना है आत्मज्ञान, इसलिए यमराज जो नचिकेता को दे रहे हैं आत्मज्ञान, वो ऐसी वस्तु का, इसलिए इतने प्रकार से ऐसा वो सब वर्णन करते हैं। अब तृतीय वल्ली और उसके बाद में दूसरा अध्याय, तीन वल्लियां हम थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं स्पर्श करते करते आगे बढ़ेंगे। अब तृतीय वल्ली शुरू हो रही है, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता। ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और घाम के समान परस्पर विलक्षण दो तत्व है। यही बात जिन्होंने तीन बार नाचिकेताग्नि का चयन किया है वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी कहते हैं। अब यहां इन्होंने ये कहा है, ये प्रकरण तो नया आरंभ हो रहा है, और यहां दो प्रकार कह रहे हैं कि विद्या का फल क्या होता है और अविद्या का फल क्या होता है। अविद्या का फल पुनः पुनः जन्म यही होता है, और विद्या का फल ये होता है कि आप उस आत्मा तक पहुंच जाते हो। परंतु ये जो विद्या और अविद्या लेने वाला ये जो होता है वो कौन होता है, ये जीवात्मा होता है, और जीवात्मा माने अज्ञान। जीवात्मा परमात्मा, जब तक हम जीवात्मा बोध से रहते हैं तब तक हम अविद्या में है, अज्ञान में ही है, लेकिन फिर भी जो विद्या का आश्रय लेता है ये जीवात्मा, जब विद्या का आश्रय लेता है तो ये निश्चित ही उस ज्ञान तक पहुंच जाएगा, लेकिन अविद्या का आश्रय वाला उसकी तो गति कितनी, कैसी कैसी गति होगी उसकी कोई धारणा नहीं, कितना कहां 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 जा रहेगा। और क्या करता है ये ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, ये पुण्य कर्म करता है, सुकृतस्य लोके माने सुकृत करके ये भोगों को ही प्राप्त होता है, और इसका आना जाना, लेकिन ये जो दूसरा जो विद्या से जो होता है वो क्या होता है, विद्या से वो जो गुहा या अंदर इसके भीतर जो अंदर का जो ज्ञान है उस ज्ञान तक वो विद्या वाला पहुंचता है। और इसका स्वरूप कैसा है, छाया तपो, क्योंकि छाया स्वरूप जीवात्मा क्या है, कहते जैसे समझाने का इसका है प्रतिबिंब या छाया, आत्मा की छाया। छाया सत्य है भी और नहीं भी है, छाया को कोई अस्तित्व नहीं लेकिन अस्तित्व है भी, जैसे अभी इसलिए तो ये माया या अविद्या को यही कहते हैं कि इसको है भी नहीं बोल सकते और नहीं भी नहीं बोल सकते, नहीं बोलो तो है अनुभव आता है, और अनुभव आता है लेकिन अनुभव आता है इसलिए क्या सत्य है, नहीं ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि यहां ये दो तत्व है, और वो दो तत्व कौन से, वो एक ही है, एक सत्य है यहां और एक सत्य की छाया है। तो ये जो ऋतम पिबंतो जो करता है, जो सुकृत करता है दुष्कृत करता है, सुख दुख जो भोगता है, वो कौन करता है, वो छाया। छाया के लिए ये दोनों सत्य है। ब्रह्मविदो वदन्ति, ये जो जानने वाले है ब्रह्मविद जो है वो कहते हैं कि केवल छाया ही ये सुकृत और दुष्कृत भोगती है, सत्य का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। यह सेतुरी जाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत परम अभयम तितीर शताम पारम नाचिकेत शके मही। जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है उस नाचिकेत अग्नि को, तथा जो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हो। अब कहते हैं कि ये जो नाचिकेत यज्ञ से जो जो जो, जो स्थान प्राप्त होता है वो कैसा है, वो एक सेतु के जैसा है। माने हम एकदम उस पर ब्रह्म में नहीं जा सकते, हमको अपर ब्रह्म जानना पड़ता है। और ये जो ये त्रिनाचिकेत यज्ञ है ये किस में आता है, अपर ब्रह्म में भी आता है, अपर ब्रह्म में आता है ये, क्योंकि ये भी एक विद्या है, विद्या संपन्न करने वाला वो छाया स्वरूप है, इसलिए वो भी अज्ञान में ही है, लेकिन ये एक सेतु का काम करता है, ये आपको इतने आगे तक पहुंचा देता है, इसलिए ये भी जानते हैं। माने जैसे यहां का वर्णन किया गया है, ये सप्त तो यहां भूमि का जो है ये आज्ञा चक्र यहां है, आज्ञा चक्र में जब जीवात्मा पहुंच जाता है तो वो स्वरूप जान जाता है, लेकिन स्वरूप के साथ एकत्व नहीं होता उसका, जब आज्ञा चक्र का छेदन करता है तभी वो इधर जाता है। और इसका वर्णन किया गया है कि जैसे कांच में हम दिए को देख रहे, ज्योति को देख रहे, ज्योति देख ली हमने, यहां ज्योति समझ गया, ज्योति का ज्ञान हो गया, लेकिन कांच के आवरण में है, कांच के आवरण में होने से एक तो व्यवधान है, कुछ तो व्यवधान है वो कांच का, लेकिन सत्य दिख गया है। वैसे ही जो त्रिनाचिकेत करता है वो लोग भी सत्य को जान जाते हैं, बहुत ऊंची अवस्था है ये यहां तक के पहुंचना, या त्रिनाचिकेत यज्ञ से जहां जाते हैं, जिस लोक में, जहां जिस अवस्था में पहुंचा जाता है, साधक पहुंचता है, वो इतनी ऊंची अवस्था है कि वहां भी वो सत्य को जान जाता है, लेकिन फिर भी कुछ भेद उसका बना रहता है। यहां कहने का तात्पर्य वही है, लेकिन वही सेतु है, उस सेतु का तात्पर्य कि वो वहां जाने के लिए, वहां गए बगैर आप वहां नहीं जा सकोगे, उसको लांघकर एकदम आप कहेंगे कि हम मूलाधार से एकदम यहां तक विशुद्ध में पहुंच जाएंगे, विशुद्ध से आगे नहीं, मूलाधार स्वाधिष्ठान सब एक एक करके जाकर आपको जाना पड़ेगा, और जब तक यहां नहीं आएंगे, ठाकुर ने क्या कहा है, जब तक कंठ में मन आता है यहां तब तक मैं बात कर सकता हूं, लेकिन जब कंठ से मेरा मन ऊपर चला जाता है, आज्ञा में चला जाता है, मेरा बात करना बंद हो जाता है, मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूं, कुछ समझा नहीं सकता, ये ठाकुर ने कहा। क्यों? क्योंकि वहां पर बाकी सब खत्म हो गया है, अभी एकत्व के इतने करीब आ गया है, और बाकी सब इंद्रियों का जो प्रवेश है, इसके आगे इंद्रियों का प्रवेश नहीं है, जहां इंद्रियों का प्रवेश ही नहीं वहां कैसे बताएंगे। लीला प्रसंग में शारदानंद जी कहते हैं कि हमें लगता था कि वो मां यहां जाने से क्या दिखता है, ये ठाकुर कहते मैं तुम्हें समझाता हूं, लेकिन समझा नहीं सकते थे, यहां जाने से समाधि में लीन हो जाते थे। और शारदानंद जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते कि हमें लगता था कि मां बड़ी दुष्ट है, ठाकुर हमें समझाना चाहते हैं, ये मां समझाने नहीं देती, तब हमें ये नहीं समझता था कि अरे ये समझाना समझना ये सब इंद्रियों का राज्य जहां तक है वहीं तक हो सकता है, लेकिन इसके बाद में तो इंद्रियां जाती हैं, इंद्रिया है ही नहीं, यहां केवल एक आवरण है, ज्ञान पर एक आवरण आया है, बाकी कुछ नहीं है, इंद्रिया खत्म हो गई है, तो कैसे समझे, तो ये ऐसा है, लेकिन उसको ज्ञान तो हो गया है, जैसे कांच में से ज्योति देख लिए, इस प्रकार यहां कहते हैं कि वो ये लोग भी जानते हैं। और बहुत बार तो देखा जाता है ये ब्रह्म ज्ञान या माने ब्रह्म लोक से जो आते हैं, बहुत से संतों ने कहा है अपने यहां हम लोग ब्रह्म लोक से आए, संतों लोग अपने उनके जब पढ़ेंगे देखेंगे उसमें, और हम उनको ईश्वर तुल्य मानते हैं, क्यों, क्योंकि उनको वो पूरा वो ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान लेकर ही आए हैं, हाँ वो सर्वश्रेष्ठ, जैसे विवेकानंद जी को ठाकुर ने अलग श्रेणी का कर दिया, बाकी सब शिष्यों को ये सगुण साकार ब्रह्म के उपासक थे, केवल निर्गुण ब्रह्म का वह साधक या उसका अधिकारी केवल एक नरेंद्रनाथ थे, केवल यही तो अंतर था इन सब में, सभी बड़े महान थे, सभी समाधिवान थे, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की समाधि प्राप्त करने का अधिकार केवल नरेंद्र में था, इसलिए ठाकुर नरेंद्र को अलग से करते थे। अब ये शरीर को लेकर एक रूपक बताया है कि शरीर संबंधित एक रथादि का रूपक व्याख्या, आत्मानम सुरक्षणम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन परग्रमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान आत्मेन्द्र मनोयुक्तम भोक्ते त्याहु मनीषिणः। अब ये इनको आत्मा का वर्णन करना है, और आत्मा कैसा है, किसको किसको छोड़कर है, तो इसलिए कह रहे हैं कि तू आत्मा को रथी जान, चलाने वाला जान, शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़े रूप से कल्पना किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बताते हैं, और शरीर इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। माने यहां भोक्ता जीवात्मा भोक्ता बन जाता है, कैसे, शरीर इंद्रिय मन से युक्त होकर, और ये वो कैसा है, वो छाया रूप है, तो ये जाता कहां है, ये हमारी इंद्रिया जाती कहां है, कौन से रास्ते में दौड़ती है, अपने अपने अर्थ के विषय में। जैसे आंख का विषय है रूप, त्वचा का विषय है स्पर्श, श्रोत्र का विषय है शब्द, इस प्रकार सब इंद्रिया अपने अपने विषय में जाते, मैंने मार्ग में जाते हैं। इसलिए इसको शरीर को एक रथ का एक रूपक दिया है। अपने पास समय कम है इसलिए फास्ट दौड़ना पड़ेगा थोड़ा। आगे कहते हैं रथ में चलना पड़ता है। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे। जो अब अविवेक, विवेक क्या है और अविवेक क्या है, ये अविवेक वालों की गति क्या होती है ये समझा रहे। जो बुद्धि रूप सारथी सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्त से युक्त होता है उसके अधीन इंद्रिया इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े। जैसे जो दुष्ट घोड़ा है वो सारथी को मानता नहीं, वैसे हम लोगों के जो घोड़े है इंद्रिया है ये भी ऐसी हमको मानती नहीं, कितना भी कोशिश करे कि नहीं देखूंगा फिर भी इधर नजर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो संयम नहीं आया, इंद्रिय और उसके अर्थ को हमने संयम में नहीं लाया, ये दुष्ट घोड़े है हमारे वो, इसलिए वो अपने अर्थ की तरफ चले जाते। सभी इंद्रिया इस प्रकार होती है। फिर दूसरा इसमें कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। परंतु जिसके जिनके कंट्रोल है, मैंने आंख बंद करके बैठ गया, अब इधर कुछ भी हो जाए मैं नहीं देखूंगा, मन इतना निगृहित हो गया, इंद्रिय इतने शांत हो गए हैं, उसको कहा है कि इसके घोड़े अच्छे हैं। माने देखिए अध्यात्म में सबसे पहले कहते हैं कि इंद्रिय निग्रह यम नियम, जो योग में बताते हैं इसमें भी क्या बताया है, पहले यम नियम में बताया है, इंद्रिय निग्रह ही बताया है। इसलिए इसकी शुरुआत ही जो है ये इंद्रिय निग्रह से होती है, क्योंकि ये इंद्रियों में ही ये हमारा पूरा जीवन गुथा हुआ है, माने इंद्रियों के साथ ही हमारा जीवन पूरा बंधा हुआ है। इसलिए इंद्रिय निग्रह से ही सब कुछ शुरू होता है। फिर अविवेकी संसार, और ऐसा होने से जो अविवेकी होता है उसको क्या होता है, उसका फल क्या होता है, उसको बार बार इंद्रियों के चक्कर में पड़ना पड़ता है। यस्तु विज्ञानवान भवति अमनस्क सदा अशुचि ही अमनस्क सदा अशुचि न स तत्पदमाप्नोति स संसारम च अधिगच्छति। लेकिन जिसका मन संयत नहीं है, इंद्रिया अनकंट्रोल्ड है, उसको बार बार संसार में ही पड़ना पड़ेगा। और जो विज्ञानी है उसका क्या होगा, परंतु जो विज्ञानवा है, संयत चित्त है, सदा पवित्र रहने वाला है, वह उस पद को प्राप्त कर लेता है। माने सबसे पहली कंडीशन बताई है इंद्रियों को वश में लेना, सबसे पहली कंडीशन यहां ये कंडीशन कहो अथवा इसकी एक गति, आत्मा को जानना है, आत्मज्ञान दे रहे हैं नचिकेता को, तो बोलने कि पहले जब तक ये इंद्रियों पर संयम नहीं आएगा, इंद्रिया संयम संयत चित्त नहीं जब बनेगी, पांच इंद्रिया और छठा मन, इंद्रिय भी एक मन भी एक इंद्रिय है, जब तक मन नहीं आएगा कंट्रोल में और इंद्रिया नहीं आएगी, जैसे इंद्रिया संयत हो जाएगी मन भी अपने आप आ जाएगा। और हम लोग हमारा जो साहित्य पढ़ते हैं उसमें कहते हैं ये जो हमारी जिह्वा है इसमें दो इंद्रिया है, वाचा भी है और रसना भी है, रस ग्रहण भी है, इसमें बहुत पावरफुल है, इसलिए सबसे पहली इंद्रिया इसका संयम बताया गया है। अब इन्होंने केवल इंद्रियों को लेकर आगे बढ़ गए हैं। विज्ञान सारथी अस्तु मन प्रग्रवान स्वर्ण पारमापनोति तद विष्णु परमम पदम। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि सारथी से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। माने देखिए केवल मन संयत अगर हो गया, इंद्रियों को संयम प्राप्त कर लिया, तो कितना बड़ा माने एक कितना बड़ा हमने एक हिस्सा पार कर लिया। ठाकुर मास्टर महाशय को यही कहते हैं, एक बार ये स्थूल का हो गया, संयम हो गया, स्थूल संयम जीवन में आ गया कि तुमने बाजी मार ली, अब आगे तुम बहुत जल्दी चले जाओगे। जैसे वो कहते हैं कि नौका समुद्र में जाती है तो शुरुआत की जो ये जो तरंगे होती है उनको काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो ठाकुर ने कहा मास्टर महाशय को कि देखो शुरुआत जो है वही जरा डिफिकल्ट है, उसी में सभी साधक उसी में अटक जाते हैं, लेकिन वो पहला अगर पार कर लिया तो फिर तुम्हें आगे कुछ नहीं। इसके कहते कि जिसका विज्ञानवान सारथी हो गया, माने जिसके मन में विवेक प्रबल हो गया, वो विवेक ही हमें पार करता है, क्योंकि विवेक में ही श्रेणियां हैं, लोअर विवेक हायर विवेक। ये जो सांख्य में आता है कि जिसे अपने माता को ज्ञान देते हैं वो ये सांख्य वाले कपिल अपने माता को ज्ञान देते हैं, वो पर वैराग्य के लिए देते हैं, क्योंकि केवल स्वर्ग में जाना या ब्रह्मलोक तक जाना, ब्रह्मलोक से भी पुनः आना पड़ता है जब तक वो पर वैराग्य नहीं आता और वो पर संयम जाता। वो इसलिए कहा है ना कि जब तक इंद्रियों का रस नहीं जाता पूरा तब तक वो इंद्रिय संयम नहीं माना जाता है। और इंद्रिय संयम इतना महत्व का क्यों है, इंद्रियभ्य परार्थ अर्थेभ्यश्च परमः मनसस्तु परा बुद्धेर बुद्धेरात्मा महान परा, क्योंकि ये इंद्रियों से भी उसके अर्थन है बहुत पावरफुल है और उससे भी अर्थेभ्यश्च परम मनः मन से उनके अर्थ से मन श्रेष्ठ है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। माने एक स्टेप बाय स्टेप जाना है, एक एक चीज कितनी पावरफुल है कैसी भयानक है वो इसको यहां इसको समझा रहे हैं, नचिकेता को समझा रहे। और फिर कहते हैं महतः परम अव्यक्तात् अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। महत तत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से भी पुरुष पर है, पुरुष से पर और कुछ नहीं है। अब एक एक वो गति समझाने के लिए कहा कि ये महत तत्व में क्या है, महत तत्व में सब कुछ है, तीनों गुण है, महत तत्व में सत्व रज तम तीनों गुण है। और उसके पहले जो है श्रेष्ठ है वो अव्यक्त है, उसी को आद्या शक्ति आदि कहते हैं कि जो मूल प्रकृति है वो जब सृष्टि होती है तो वह महत तत्व बोल के प्रकट होती है, क्योंकि अब वो ऐसी अवस्था में आई है जहां से ये सृष्टि आरंभ हो रही है। महत तत्व में तीनों है गए, सत्व रजतम, सत्व से मन की उत्पत्ति होती है, ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है, रजोगुण से प्राण की उत्पत्ति होती है, कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है, तम से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। महत तत्व, महत तत्व तक पहुंचना उसमें तीनों है, वहां नहीं जमे केवल वहां पहुंचने से नहीं चलेगा, उससे अव्यक्त तक जाना पड़ेगा, उससे अव्यक्त श्रेष्ठ है। और अव्यक्त में वो तीनों गुण ऐसे है कि जो व्यक्त नहीं हुए है उसके अंदर है, क्यों, अगर उसमें नहीं रहते तो महत्तत्व कैसे आएगा और कल्प के बाद फिर दूसरे कल्प में कहां से आएंगे, इसलिए वो है लेकिन व्यक्त नहीं हुए है, इसलिए अव्यक्त उससे श्रेष्ठ है। और फिर अव्यक्त से श्रेष्ठ क्या, अव्यक्त से श्रेष्ठ दूसरा कुछ नहीं, अव्यक्त से श्रेष्ठ केवल पुरुष ही है। फिर कहते हैं एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। देखिए ये श्लोक के पहले उन्होंने ये क्रम बता दिया, ये क्रम से हमें एक एक कैसे सटल 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 सटलर सटलर होते जाता है, सटलर और सटलेस्ट, माने ये कितनी सूक्ष्म बात को हमें जानना है। देखो हमको जानने वाले को जानना, आत्मा का ज्ञान कराना है, माने जो जानता है। अब केवल जो जानता है इतना ही नहीं, वो स्वयं जानने वाला जानने योग्य बन गया है ये समझाना है, क्योंकि एकमेवा द्वितीय ब्रह्म उसको समझाना है। इसलिए ये कैसे कैसे क्रमवार इसको बता रहे कि कैसे एक के बाद एक, अगर इसके ये सब नहीं बताएंगे तो इसकी विशेषता ही समझ में नहीं आएगी। विशेषता क्या है, क्यों इतना ऐसा कहा गया है, इतनी है माने कितने पहाड़ पार करने हैं, अरे ये पहली रेंज, ये रेंज को पार करो, उसके बाद दूसरी एक रेंज वो और भी कठिन है उसको पार करो, उसके बाद तीसरी फिर भी पहुंचे नहीं। ठाकुर ने यही बात कितनी सुंदर तरह कहा कि राजा वो सात दरवाजों के पीछे बैठे हैं, पहले दरवाजे में पहुंचने से ही बोलते राजा को देख लिया, नहीं वो राजा नहीं है, और आगे जाओ दूसरा दिखेगा, कहते उसका ऐश्वर्य और बड़ा है और पावरफुल है। माने ये एक से एक कैसे पावरफुल होते जाते हैं, ये सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं, उनका महिमा उतना ही श्रेष्ठ है, और वो उतने। और दूसरी तरफ से देखिए इसे, जैसे हम स्थूल को वश में लेते हैं, जैसे सूक्ष्म में चले जाते हैं। देखिए इंद्रियों से मन का आनंद श्रेष्ठ है, मन का आनंद, मन से बुद्धि का आनंद श्रेष्ठ है। एक बार बुद्धि का आनंद आने लगा तो हमारा मन इधर उधर दौड़ना बंद कर देता है, उसी में छोटा बच्चा देखिए, बच्चे को खिलौने देते हैं हम लोग, खिलौना लेके खेलता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर उसको हम जंगल की किताब दे देते हैं, और जंगल की किताब लेके बच्चा प्राणियों को देखता है, खिलौनों खेलना छोड़ देता है, किताब पढ़ने में मजा आता है उसको। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर वो जंगल की कहानियां उसे मजा नहीं आती, दूसरे नॉवेल्स पढ़ता है फिर वो, जहां दूसरी कोई और थोड़ी फाइन बात बताई होती है, फिर उससे भी और क्लासिक्स पढ़ता है वो, उसमें मजा आती है, फिर छोटे मोटे जो उपन्यास वगैरह उसको मजा नहीं आती, छोटे मोटे उपन्यास नहीं पढ़ता वो, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो फाइन सूक्ष्मता की ओर जाता है आनंद आता है। और फिर सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञान ये पढ़ने का हम देखते हैं, शास्त्रों में जब बुद्धि लग जाती है, शास्त्रों में जब आनंद आने लगता है, शास्त्रों के सामने सब फीका लगता है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का जो विषय होता है, शास्त्रों में जिसको एक बार रुचि आ गई तो शास्त्रों का विषय इतना सूक्ष्म है कि उसकी भी एक अपनी नशा आ जाती है, मजा आ जाता है। जिसको पढ़ने या इसका आनंद है वो दूसरे, उसको खाने में नहीं, एक हाथ किताब लेके खाते रहते हैं, क्या खाया कैसे खाया पता ही नहीं चलता, लेकिन खाने में मन इधर है। क्यों? इससे इसका आने से इसका आनंद ज्यादा बड़ा है। यहां ये इसलिए यहां कह रहे हैं कि वो कैसे दिखता है, दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। माने आप जब एक 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 को पार करते जाते हो तो आपकी बुद्धि सूक्ष्म 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 हो जाती है, और वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि तब कहीं आप उस सूक्ष्म बुद्धि से आत्मा को ग्रहण कर सकते हो या समझ सकते हो आत्मा के बारे में। शास्त्र पढ़ के केवल वैसे समझ में नहीं आता। अब जब आप अच्छे महात्माओं से सुनो, जिन्होंने जिनके जीवन में आया है, उन लोगों से हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, इसलिए इसमें रुचि आती है। नहीं तो केवल ऐसे हम भी पूछते थे महाराज लोगों को, बड़े महाराज लोगों को, ये ऐसा कैसे समझता है आपको, ये किताब देख के कैसे ऐसा है ये? तो बोले अरे नहीं, हमने कितने साल क्लास किया, और मुझे भाग्य से वो नागपुर में रहने को मिला जहां क्लासेस खूब होते थे। भास्करेश्वरान जी तो आखिरी तक 74, 76 में वो गए थे, 74 तक वो क्लासेस लेते थे और सब साधु बैठते थे। माने वह क्लास की परंपरा ही थी। तो पहले 10 साल हम लोगों को क्लास ही करना पड़ता था, रोज एक घंटा क्लास, और उसमें सब ये होता था, तो सुनने को मिलता था सब। तब वो सुनते सुनते, पहले रुचि नहीं थी इसमें, लेकिन सुनते सुनते रुचि बढ़ती गई, और जैसे जैसे समझ आने लगी तब लगा, अरे हाँ बराबर ठीक, पहले नहीं समझता कि ऐसा क्यों। एक बार मैंने गीता का एक श्लोक स्वामी जी को पूछा, बोला ये 12वें श्लोक में ऐसा ऐसा कहा है, तो उन्होंने मुझे बोला गीता लेके आओ, फिर वो 8वें 9वें 10वें श्लोक से लेकर बताया, देखो ऐसा 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 है इसलिए 12वें श्लोक में ये कहा है। एकदम नहीं, इसका सबका एक एक रिलेशन होता है, ऐसा ऐसा है इसलिए ये ऐसा। इसी प्रकार ये उपनिषद में भी एक विशिष्ट एक क्रम, और क्रम कौन सा होता है वहां, यहां क्रम होता है स्थूल भाव से सूक्ष्म भाव। हमें यही लेना है इसका, कि स्थूल भाव से सूक्ष्म भाव तक हमें धीरे धीरे उपनिषद या शास्त्र ले जाते हैं। और फिर ये शास्त्रों को माता कहते हैं, क्यों? क्योंकि मां जैसे बच्चों को समझती है, बच्चे को देना, कितना देना, क्या देना, कैसा देना, कौन से बच्चे को क्या देना, ये जैसे मां समझती है वैसे श्रुति माता कहते हैं। तो श्रुति माता इसलिए कहते हैं कि शास्त्र भी हम लोगों को अज्ञानी है, हम तो अज्ञान में है, तो ये अज्ञानियों को इसको कैसे ज्ञान देना, तो ऐसे ऐसे देने से ये थोड़ा समझ सकेगा, नहीं तो ये समझेगा ही नहीं। इसलिए ये श्रुति इस प्रकार से इसकी योजना हुई है या होती है। फिर कहते हैं विवेकी पुरुष वाक इंद्रियों का मन में उपसंहार करे, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महत्तत्व में लीन करे, और महत्तत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। ये क्रम बता दिया है। विवेकी पुरुष सबसे पहले विवेक कहा, और विवेक से एक 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 करके हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें जाना है, वो इस प्रकार जाते। अब उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाया है, लय चिंतन, ये करके उन्होंने ये श्लोक बताया। और कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें उठना पड़ेगा। ये स्वामी जी का बहुत प्रिय श्लोक स्वामी जी का ये आया है अब यहाँ पर, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। ये कैसा है, ये दोनों तरफ से इसको एक तेज बनाया गया है, इधर से भी काटता है इधर से भी काटता है, बड़े संभाल के चलना पड़ेगा वस्त्रा जैसे होता है। तो कहते हैं कि ये इतना, ये पथ जो है, ये आत्मा को जानने का मार्ग इतना कठिन है, माने और कटता मतलब क्या होता है, अविद्या में फंस जाता है। शास्त्र को ठीक से ढंग से उचित ढंग से नहीं समझा तो शास्त्र हमें बांध देते हैं, शास्त्र हमें फिर से अज्ञान में गिरा देते हैं, अज्ञान में ही हमें फिर ज्यादा रहने के लिए निमित्त बन जाते हैं। इसलिए तो शास्त्र ज्ञान भी बांधता है, जहां वहां उन्होंने विद्या अविद्या कहा था ना, उसका तात्पर्य यही था कि ये शास्त्र ज्ञान भी, ये भी तो कहा, ये भी अविद्या में आता है, ये भी अपर ब्रह्म में आता है, पर ब्रह्म नहीं है, वेद सब अपर ब्रह्म में आते हैं। इसलिए ये कहा कि ये ऐसा पथ है, दुर्गम पथस्तत कवयो, कवयो कवयो का अर्थ है ऋषि लोग, जिन्होंने उसका दर्शन कर लिया है, जिन्होंने इसको जान लिया है। उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। अब ये निर्विशेष आत्मज्ञान से अमृतत्व प्राप्ति, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथारसम नित्यम अगंधम अवच्ययत अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निश्चाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। ये जो ऐसा है, इसको जानने से ही मृत्यु से तुम छूटते हो। मृत्यु का रहस्य पूछा है नचिकेता ने कि मृत्यु के बाद क्या रहता है क्या नहीं रहता, ये मुझे बताओ। तो पहले इस प्रकार बताए, और भी दूसरे प्रकार से आगे बताने वाले हैं, जो अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है, अव्यय है, तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महत तत्व से भी पर और ध्रुव निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। यहां पहले कह गए कि मृत्यु का रहस्य पूछा है ना नचिकेता ने, कहते हैं कि वो इस प्रकार का पद है, वो अवस्था इस प्रकार की, अशब्द स्पर्श माने टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस, कुछ नहीं, जहां आप कुछ भी, जहां गुण गुणी संबंध खत्म हो गया है, गुण भी नहीं गुणी भी नहीं है, गुणी गुण सब एक हो गया है, ऐसी वो अवस्था है। और उसको ही केवल जानने से, ये जो जिन्होंने जान लिया है आत्म तत्व को जानने वाले, वो कहते हैं कि वहां पहुंचने से ही केवल मृत्यु के मुख से जीव छूटता है, माने वही मृत्यु कुछ तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। अब कहते हैं ये जो विज्ञान बताया है, ये विज्ञान की स्तुति कर रही है श्रुति। कहते हैं नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्त सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके मह्यते। कल भी हमने देखा था कि नचिकेता द्वारा प्राप्त तथा मृत्यु के कहे हुए इस सनातन विज्ञान को कहे और सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। माने देखिए इसका महात्म्य बताया कि ये ज्ञान बहुत वास्तविक, ये सब आत्मज्ञान या आत्मा का ज्ञान, आत्मा संबंधी ज्ञान, ये बहुत दुष्कर है, कोई नहीं बोलता। अभी विशेष विशेष हम लोग ठाकुर की कृपा से हम लोग यहां आए हैं और ठाकुर की कृपा है इसलिए इन विषयों में हम लोग को थोड़ी रुचि आती है, नहीं तो ये आत्मा का ज्ञान या इस प्रकार का, जहां सब इंद्रिया विषय और सब प्रकार के भोगों का त्याग है या निरोध है, कौन चाहता है, कौन चाहेगा। इसलिए कहते हैं कि ये नचिकेता ने पूछा, ये नचिकेता की भी स्तुति है इसमें, और कहने वाले यमराज है उनका भी विशेष महिमा है इसमें, कि ये जो ज्ञान है ये कितना रेयर है, और इसको सुनने वाला भी, सुनने वाला अगर कान पर, पहले के जमाने में सुनते थे, पहले के जमाने में इस किताब वगैरह ज्यादा नहीं होती थी, गुरुमुख से सुनने मिलता था, लेकिन सब लोग कहां सुनते थे, सब लोग नहीं, अधिकारी ही सुनना चाहते थे, बाकी जो आवश्यक है उतना सबको सुनाया जाता था, जो विशेष विशेष होते थे वे गुरुकुल में रह जाते थे और ये सब विज्ञान जानते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, और इसकी कल जैसे हमने इसके पहले का एक श्लोक था कि इसकी बुद्धि से भी अगर इस, ये जो नचिकेता यमराज संवाद का जो ज्ञान है इसकी बुद्धि से भी धारणा होती है तब भी वो ब्रह्मलोक में जा सकता है, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है, माने अगर तीव्र इच्छा होगी, भले योग्यता पूर्ण नहीं आई लेकिन कुछ धारणा हुई है, बुद्धि से भी धारणा हुई तब भी ये ब्रह्मलोक तक जा सकता है। हाँ, अधिकार नहीं होने के कारण फिर से आना पड़ेगा, लेकिन वो एक अनुभव तो मिल जाएगा, एक अनुभव, कुछ तो अनुभव मिल सकता है, इतना पावरफुल या इतना प्रभावी यह ज्ञान है। फिर जो पुरुष इस परम गुह्य ग्रंथ को पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है अथवा उसका श्राद्ध अनंत फल वाला होता है, अनंत फल वाला होता है, ऐसा करके इसकी स्तुति की है, या इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानंत्याय कल्पते, तदानंत्याय कल्पत इति, ऐसा करके इस ज्ञान की महिमा को उन्होंने बताया है। अब यहां दूसरा अध्याय शुरू होता है और अब ये हम थोड़ा फास्ट आगे चलेंगे क्योंकि हमने पहले इसमें पहले वल्ली में पहले अध्याय में बहुत सा जोश किया, अब उसी प्रकार से ये बातें आई है। अब यहां इन्होंने पुनः आत्मदर्शन का विघ्न यह बताकर, हमने उसकी चर्चा की है, लेकिन यहां इंद्रियों की बहिर्मुखता, इंद्रियां इतनी ऐसी क्यों है, कल मुझे किसी ने पूछा था यहां बाहर निकले की, लेकिन ऐसा क्यों है, हाँ आपने पूछा था से क्यों है, ये ईश्वर की योजना ही ऐसी है, परांच खानी वितन स्वयं भूत तस्मात परांग पश्यति नांतरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्म इच्छन, परमात्मा स्वयं भू ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है अंतरात्मा को नहीं, जिसने अमृतत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्मा को देख पाता है। माने इनका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है ये सृष्टि में, सृष्टि जो आई वो बाह्य जगत देखने के लिए ही ईश्वर ने इसकी योजना की है। अब ऐसा क्यों आया, कैसे आया, ये उसका स्वभाव है, देवस्य एष स्वभाव आत्मकामस्य कास्पृह, बोलती ये प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, तो बोलते उसका स्वभाव ही ऐसा देखना, खेलना और खेलने के बाद शांत होकर रहना, खेलने को कहते हैं प्रलय सृष्टि और सृष्टि के बाद में फिर से प्रलय शेष होके पूर्ण शांति पुनः, इसीलिए कहते हैं कि एक एक कल्प का एक एक ब्रह्मा होता है और उसमें कई चतुर्युगी होती है, उसमें सब आता है और फिर जब ब्रह्मा की रात्र शुरू हो जाती है सब फिर से कल्पांत तो हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, तो इस प्रकार उसका स्वभाव ही है दिखना और लुप्त हो जाना, प्रकट होना लुप्त हो जाना। स्वामी जी ने कहा ना इसलिए ज्ञान युग में कि ये इवोल्यूशन इन्वोल्यूशन ये सतत चल रहा है, इवॉल्व होना और फिर से इन्वॉल्व होना, अपने इसमें समेत लेना, और इसलिए वे ऊर्ण नाभि का दृष्टांत देते हैं, जैसे ये मकड़ी होती है, मकड़ी अपने में से ही जाल निकालती है, खुद उसी में खेलती है, उसी में उसको किसी को खाने वाले कीट को पकड़ती है, खाती है और फिर उसको अपने भीतर खींच लेती है, वैसे ब्रह्म का स्वभाव ही है इस प्रकार सृष्टि। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये सब संकल्पनाएं, सब जो कॉन्सेप्ट जो संकल्प सब उस रूप से जगत जगत संकल्प ब्रह्मा के मन में उदय होता है कहते पहले, और जैसे संकल्प का उदय होता है वैसे धीरे धीरे पहले सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है और सूक्ष्म सृष्टि के बाद में ये स्थूल सृष्टि तक आ जाता है, इसलिए कहा है कि ये सत्वगुण से ये होता है, रजोगुण से ये होता है, तमोगुण से ये होता है, और ये जो पंच महाभूतात्मक सृष्टि है ये तमोगुण से माने सबसे निकृष्ट स्थूल सृष्टि सबसे निकृष्ट कही गई है, इसलिए देवता लोग पृथ्वी पर आना ही चाहते क्योंकि यहां से वो सृष्टि थोड़ी श्रेष्ठ है, और इसीलिए वो श्रेष्ठ है इसीलिए यहां के जीव को वहां का आकर्षण होता है, ये तो निकृष्ट है मालूम है, 70-80-90 साल जी के मनुष्य मर जाता है, मन तो वैसे ही रहता है, इंद्रिया जो है वो देवलोक में भी इंद्रिया काम करती है, इंद्रिया मरती नहीं है, इंद्रिया बलवान है बहुत, और इसलिए इंद्रियों के सहित ये जो छाया रूप जीवात्मा जो है वो चला जाता है शरीर से, और फिर ये इंद्रियों के अर्थों का चिंतन होने के कारण इंद्रियों के अर्थों से उसको वितृष्णा नहीं हुई, इसलिए पुनः वो इस स्थूल सूक्ष्म में आता है, स्थूल सृष्टि में आता है, उसको आना पड़ता है, इसलिए माने जो कहा है ना कि बाबा ईश्वर से ठाकुर को प्रार्थना करो निर्वासना होने दो, निर्वासना होना यही सबसे उत्कृष्ट प्रार्थना है, क्योंकि कुछ भी ये जगत संबंधी वासना रहने से बार बार आना पड़ता है और वासना होती रहेगी क्योंकि इंद्रियों को ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है, परमात्मा ने बाहर जाने के लिए ही बनाया, परांच खानी वितन स्वयंभू, स्वयंभू ने इनको बाहर देखने के लिए ही किया, तो बाहर देखेंगे माने अपने विषय को देखेंगे, आवृत्त चक्षु जब विवेक जीवन में आता है, जीवन में जब विवेक आएगा हमारे और हमारा बाहर देखना बंद हो जाएगा और हम केवल अंदर ही पूरे सभी और चक्षुओं को घुमा लेंगे अंदर, सभी इंद्रियों को जब अंदर घुमा के हम अंदर भीतर देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। ये जब जीवन में आएगा, साधक के जीवन में जब ये आता है, ये विवेक आता है और केवल बाहर देखना बंद हो जाता है, तब कहीं ये मोक्ष का द्वार या आत्मा का दर्शन उसके लिए सहज हो सकता है। तब शुरुआत होती है इंद्रियों को, और इंद्रिया ऐसी है, अब इसको लेकर 5-7 श्लोक आगे बताए हैं कि कैसे इंद्रियों के चक्कर में पड़ते जो आते हैं वे कैसे बालक है। पराच कामानंती बालाते मृत्योरियंती वितरस्य पाशम, कि ये हम सब बाल हैं, बाल माने बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं। क्यों बच्चे हैं? क्योंकि इंद्रिय और विषय हमको सत्य लगता है। आज बच्चों को जैसे खिलौने सत्य लगते हैं, वैसे ये सभी अविद्या में अज्ञान में रहने वालों को ये इंद्रिय और विषय ये सत्य लगता है। अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं, वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में पड़ते हैं, किंतु विवेकी पुरुष अमरत्व को ध्रुव निश्चल जानकर संसार के अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करते। यहां जो ये कहा है कि यहां कहने का है कि बाकी सब अब अल्पज्ञ सभी इक्का दुक्का कोई धीर पुरुष, अब वो राम को धीर पुरुष कहा है वो उसमें योग वशिष्ठ में, कि राम ही वशिष्ठ राम की खूब प्रशंसा करते हैं। अब राम तो ईश्वर के अवतार थे, करके राम में राजा बनने के पहले उस प्रकार का पर वैराग्य आ गया था, एकदम श्रेष्ठ वैराग्य। और राम ने वशिष्ठ जी को कह दिया कि मुझे नहीं रहना, लेकिन वशिष्ठ जी को मालूम था राम का कार्य दूसरा है, फिर उन्होंने राम को शांत किया था। तो अब राम को धीर पुरुष कहा है, बताइए करके ये जगत में अभी हम रामकृष्ण को कह सकते हैं। फिर आत्मज्ञान की सर्वज्ञता, अब जैसे ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। अब कहते हैं जिस इस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप रस गंध स्पर्श मैथुन जन्य सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है, उस आत्मा से अविज्ञेय इस लोक में और क्या रह जाता है? वह तत्व निश्चय यही जान, माने इस इंद्रियों से जो कुछ भी यहां जाना जाता है वो जानने वाला वास्तविक कौन है, जानता कौन है? आत्मा ही जानता है। कहते हैं उस आत्मा से अविज्ञेय इस लोक में और क्या रह जाता है? केवल आत्मा ही छोड़ा तो बाकी ये सब तो हम जानते हैं, माने अज्ञानी जो जीव है ये बाकी तो सब ये जानते हैं जिनका संबंध इंद्रियों के साथ आता है। फिर कहते हैं स्वप्नांतम जागरितां च उभौ ये नानुपश्यति महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, उस महान और विभु आत्मा को। देखिए पहले के श्लोक में कहा, ये जो उदाहरण दिया है रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान, ये स्थूल को लेकर कहे है, अब यहां कहा है ये सूक्ष्म को लेकर कहा है। ये स्वप्नांतम महांतम विभुम आत्मानम, माने यहां ये वो ये बताना ये चाह रहे हैं कि यहां जो जानने वाला है ये जागृत जगत में, वही स्वप्न में जानने वाला है, स्वप्न में भी जानने वाला वही है जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, उस महान विभु आत्मा को जानकर ही, उसको जानने से ही केवल शोक दूर होता है। माने यहां उनको बताना यह है कि यहां का जानने वाला और यहां का जानने वाला, जागृत का जानने वाला स्वप्न का जानने वाला, ये दोनों का जानने वाला एक ही है, ये दोनों ही अलग दृष्टि से सत्य नहीं है, दोनों अलग दृष्टि से सत्य नहीं है, इसको भी वही देखता है। दो हमारे घर में दो कमरे हैं, तीन कमरे हैं, पहले कमरे में हम खेलते हैं कभी, उसको कहते हैं जागृत, दूसरे रूम में हम चले जाते हैं उसको कहते हैं स्वप्न, तीसरे कमरे में हम चले जाते हैं उसको कहते हैं कारण सुषुप्ति, वो भी तीसरा कमरा है। ये आत्मा इस प्रकार तीनों कमरे में खेलता है, मांडुक्य उपनिषद में यही बात बहुत सुंदर ढंग से ऐसी है, और इसी के दृष्टि से मांडुक्य में इसको कहा है चतुर्थ तुरीय, चतुर्थ कहा है क्योंकि ये तीन में जो खेलता है वही तीन में ही आना जाना करते रहता है और तीन में रहना उसको अच्छा लगता है, लेकिन जो तीन को छोड़कर चतुर्थ में चला जाता है, चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेया, वो कहा गया है। तो यहां ये इन्होंने इस प्रकार ये दोनों के बारे में कहा कि ये दोनों को जानने वाला बुद्धिमान पुरुष जो जानता है कि अरे वो इसको यहां भी जान रहा है वहां भी वही जान रहा है वह बुद्धिमान है। फिर आत्मज्ञान की निर्भयता, ब्रह्मज्ञान का सर्वात्म दर्शन, यह पूर्वम तपसो जात मदभ्य पूर्वम अजायत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूते भीर व्यपश्यत एतद्वैस। आप कहते हैं जो मनुष्य पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है, भूतों के सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है, निश्चय यही वह ब्रह्मज्ञान। माने यहां बता रहे हैं, अब देखो पहले ये व्यष्टि रूप से बताया गया, अब यहां समष्टि रूप से समझाया गया है। ये जो ब्रह्म को किसको कहा है यहां, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा, ब्रह्मा से हम कहते हैं ये सृष्टि उत्पन्न हुई, तो क्या ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, ब्रह्मा फाइनल तत्व है? नहीं, ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाला, ब्रह्मा को भी जानने वाला जो है वो यह है। माने उसको स्थूल से सूक्ष्म में, व्यष्टि से समष्टि में लेके आए हैं। जैसे कहते हैं यहां व्यष्टि में जागृत अवस्था में हमको विश्व कहते हैं, एक को विश्व कहते हैं और समष्टि को विराट कहते हैं, वैसे सूक्ष्म में हम एक को तेजस कहते हैं, तेजस कहते हैं, और समष्टि को हिरण्यगर्भ कहते हैं, सूत्रात्मा कहते हैं, और सुषुप्ति में जहां हमें ये जागृत का भी ज्ञान नहीं है, स्वप्न का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन हम है वहां पर, और वो भी एक अवस्था है, वो भी अज्ञान की अवस्था है, जहां हम सब अनुभव करते बाद में कहते कि अच्छा लगा, आनंद आया, सुख से सोया, ये कौन सी अवस्था है, वो कारण अवस्था है। तो वहां ये कारण अवस्था में व्यष्टि को तो प्राज्ञ कहते हैं और समष्टि को ईश्वर कहते हैं, इसलिए ईश्वर भी अज्ञान में ही है, ईश्वर भी इन तीनों में ही है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति लेकर ही भगवान ने अर्जुन को कौन सा रूप, विराट रूप दिखा दिया था। माने ये कैसे वही विराट रूप से वो प्रतिभात हो रहा है, दिख रहा है विराट रूप, उसी का विराट रूप। माने अर्जुन ने क्या देखा था, अर्जुन ने देखा कि एक ही तत्व ये पूरा स्थूल जगत बना हुआ है, एक ही तत्व, अर्जुन ने एक तत्व देखा था, एक तत्व, एक तत्व का बोध हो रहा है उसको, और सब कुछ नाम रूप ये जागृत अवस्था में जो कुछ है वो सब उसको दिख रहा है अर्जुन को, विराट रूप। सूक्ष्म में हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म में जो समष्टि चैतन्य है उसको, उसका नाम दिया है सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, सब की सम टोटल। तो कभी ये लगता कि क्या वो फाइनल है, नहीं, उसको भी जानने वाला कोई है। कहते कि जो उसको देखता है, जो उसको देखता है वो है जिसको तू जानना चाह रहा है, आत्म तत्व तू जिसको कहता है कि मुझे क्या रहता है क्या नहीं रहता है ये बताओ, वो है, वो ये है। फिर या प्राणेन संभवति इति देवतामयी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूते भी व्यजायत एतद्वैतत्। जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई, उसे निश्चय यही वह तत्व है। अब यहां ये जो बुद्धि तत्व है ये हमारा जो बोध है, मैं हूं, ये जो बोध है, यहां बुद्धि माने केवल ये स्थूल बुद्धि नहीं कहा गया है, यहां ये स्थूल बुद्धि नहीं है जो यहां मैं ये खाऊं कि ये नहीं खाऊं, ये जो बुद्धि करती है ये बुद्धि है, लेकिन यहां जो बुद्धि कही गई है ये दूसरी सूक्ष्म बुद्धि, वो बुद्धि यहां नहीं है, वो बुद्धि यहां है हृदय में है। वो बुद्धि कहते हैं कि ये रहने वाली गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली गुहा कौन सी, हृदय गुहा, हृदय रूप गुहा में रहने वाली बुद्धि, ये भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, निश्चय यही वह तत्व है। तो ये कौन बना है, वही वो है, इसलिए बुद्धि तत्व या वो इसकी एकता मत तत्व के साथ की है, इसकी वो ये बुद्धि की ये बोध की एकता मत तत्व के साथ की है। ये मत तत्व जान लेने से और करीब करीब सब जान लिया इस प्रकार हो जाता है करके इसमें उपनिषद में आता है कि जो जानता है प्रतिबोध विदितम मतम, ये जो बोध है कि प्रत्येक क्षण जो हमें बोध हो रहा है, जानना हो रहा है, कभी वस्तु का हो रहा है, कभी संकल्प का हो रहा है, ये जो जानना होता है अंदर ही अंदर हम जो जानते हैं, जानने वाला होता है, जो मन को जान रहा है, बुद्धि को जान रहा है, मन के प्रत्येक संकल्प विकल्प को जो जान रहा है, ये क्या है? वो जो बोध रूप जो यहां अंदर बैठा है, वो महत तत्व के साथ एकत्व है। उसको कहते हैं कि वो जो कौन बनाए, वही वो बनकर आया है, इसलिए वो सर्वात्मक इस प्रकार हो गया है, वही सब में इस प्रकार बोध रूप से वो फैल गया है सबके अंदर। आगे कहते हैं अरणि में अब ये कैसे रहता है, किस प्रकार रहता है ये? तो जैसे लकड़ी में अग्नि का वास होता है, घर्षण से निकलता है, घर्षण से अग्नि निकलता है, इसी प्रकार कहते हैं कि वो भी बोध में ही उसका वास है, उस तत्व का। इसलिए बोध में तुम अपने बोध में ही, इसलिए अपना यहां जो प्रत्येक के भीतर एक बोध है, मैं का बोध है, वो बोध है मैं का बोध है। और इसे सबसे पहले अगर जाना जाता है तो क्या जाना जाता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ये मैं क्या है? वो मैं, वो वही वो बोध है। और वो मैं बोध, वो जो जानता है कि इसी के अंदर वो छिपा है, वही वो है कि कहले। इसलिए पहली उपलब्धि जो होती है वो होती है अहम ब्रह्मास्मि की। अब इसके बाद कहते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं होता? भेद दृष्टि के कारण। जितनी भेद दृष्टि कम हो जाएगी उतना हम उस एकत्व की ओर जाते हैं। यदे वेह तदमूत्र यदमूत्र तदन्विह मृत्यो समृत्यु आपनोति यह नानेव पश्यति। जो तत्व इस देहेंद्रिय संघात में भासता है वही अन्यत्र देहादि से भी है, और जो अन्यत्र है वही इसमें है। जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। और संक्षेप में इन्होंने कहा है यहां कि जब वो एक को न देख के जब हम अलग अलग देखते हैं, स्वामी जी की ठाकुर इतनी स्तुति इसलिए करते थे, स्वामी जी को जब कहा गया था अमेरिका में, आपने तो ठाकुर ने तो स्त्रियों के साथ मिलने को मनाई की है, आप कैसे? तो स्वामी जी ने जवाब दिया था, मुझे स्त्री पुरुष भेद नहीं दिखता, स्त्री पुरुष भेद ही नहीं दिखता था मुझे, मुझे आत्मा एक शक्ति दिखती थी सबके भीतर। और हरि महाराज तुरियानंद जी भी कहते हैं उनकी इसमें कि स्वामी जी को ऊपर ऊपर का आवरण नहीं दिखता था, आवरण के भीतर का उन्हें ज्ञान होता था, स्वामी जी की दृष्टि ऐसी थी करके तो स्वामी जी की इतनी स्तुति ठाकुर ने की है। और नरेंद्र क्यों करते थे? वो ऐसे ज्ञान में और निर्विकल्प समाधि के बाद उन्होंने अपना कार्य किया है। क्यों? आत्मदृष्टि होकर, और वो आत्मदृष्टि से एक को देखकर उन्होंने जब सिस्टर ब्रदर्स कहा था तब वो लोगों को छुआ था। छुआ क्यों लोगों को? सब लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड क्यों किया? क्योंकि आत्मदृष्टि से उन्होंने कहा था, ऊपर के भेद देखकर उन्होंने नहीं कहा। इसलिए यहां अभेद दृष्टि की निंदा की है। जो अभेद दृष्टि की निंदा करने का तात्पर्य है कि जब तक ये इस प्रकार ये देहेंद्रिय संघात में जो भास रहा है, देहेंद्रिय संघात में वो जो भास रहा है उसको जब तक देखेंगे तब तक भेद ही बना रहेगा। और अभेद दृष्टि की ओर जब तक नहीं जाएंगे तब तक मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होना पड़ेगा। हम केवल ये वल्ली एक शेष करके खत्म कर देंगे। फिर आगे कहते हैं कि मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है, इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है। और फिर कहते हैं जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है उसे भूत भविष्यत वर्तमान का शासक जानकर वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता, निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। अब यहां अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानोभूत भव्यस्य न ततो विजिगुप्सते एतद्वैतत्। यहां करके बताया कि वो रहता कहां है, वो जो आत्म तत्व या ये जो पुरुष है, जो वो रहता कहां है? वो यही हमारे शरीर पुरुष के भीतर ही रहता है, और यही भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों जानता है, ये तीनों का शासक ये है। क्यों? इसको सब कुछ मालूम है, आगे है, वर्तमान भी जानता है, भविष्य भी जानता है, क्योंकि ये तीनों काल इसी के भीतर है, इसी के भीतर तीनों काल है। और ये जब ये देखता है कि वो मैं ही हूं तो वो एक शरीर से आसक्ति क्यों करेगा? ये भूत को जानता है, वर्तमान को जानता है, भविष्य को भी जानता है, ये तीनों को ही जानता है। तो वर्तमान के एक शरीर से इसको आसक्ति कैसे हो सकती है? इसको किसी भी शरीर से इस प्रकार आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वही वो तत्व है जो तीनों को जानता है और इसको इससे इसका ये शासक है। ये आत्मा के ज्ञान के कारण जब आत्मज्ञान हो जाता है तो शरीर रक्षा की चिंता नहीं होती। कौन शरीर रक्षा क्यों करेगा? क्योंकि इन्होंने पहले कहा है कि ये मन में ही है, ये मन में ही भेद रहता है। मन में जब जान गया, मन में जब एकत्व आ गया है, मन से एकत्व जाना गया है, तो फिर शरीर की तरफ ध्यान कौन दे? क्योंकि मन से इसने भूत वर्तमान भविष्य तीनों को समझ लिया है कि ये तीनों तो आत्मा में ही है। अब इसको वर्तमान से प्रेम क्यों हो? इसलिए कहते हैं कि ये जो उसका शासक, ये तीनों को जानने वाला जो है, ये शरीर की रक्षा नहीं करना नहीं चाहता। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य सौश्वः। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है, यह भूत भविष्य का शासक है, यही आज वर्तमान काल में है और यही कल भी रहेगा, और निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। अब यहां अंगुष्ठ मात्र पुरुष करके जिसका उल्लेख किया है वो जीवात्मा दृष्टि से इसका उल्लेख किया है। ये जो एक एक शरीर में जो वास करता है, जिसको हमें जाना है, दूसरे उपनिषद में प्रश्न उपनिषद में इस जीवात्मा को लेकर ही पूरा उपनिषद कहा गया है वो, और आखिरी ज्ञान वो जीवात्मा रूप से जब हम करके ना, जब हम हमको जान लेते हैं तो हम सब कुछ जान लेते हैं। तो हमको मैंने जीवात्मा का ज्ञान होने से दिखता है कि ये जीवात्मा ही परमात्मा है, ये समझ में आ जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, ये अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान कैसे होता है? जब वो अपने अहम को जानता है तो दिखता है कि अहम माने ही जिसको ब्रह्म कहते हैं वही है अहम ब्रह्मास्मि। ये ब्रह्म का ही अहम हमारे यहां छोटा अहम होके दिख रहा है। अब इसको और समझने का ये ठाकुर का एक दृष्टांत हमें लेना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा है एक एक रस, एक सागर है, ज्योतिर्मय सागर है, केवल एक अखंड, जहां दो कुछ नहीं है, एक में केवल एक रस एक अखंड सागर है, ज्योतिर्मय सागर है, और उसके अंदर एक लकड़ी है। अब वो लकड़ी गिरी होने से आपको दो जैसे दिखता है कि इधर एक है इधर एक है, और वो लकड़ी क्या है? वो लकड़ी है अहम। और हम सबके जो अहम है, हम सबको जो एक अहम का जो बोध हो रहा है वो कहां से हो रहा है? वहीं से हो रहा है। हम सब जब अपने अहम तक पहुंचेंगे तो एक ही जगह पहुंचेंगे, उसी एक ब्रह्म समुद्र के पास पहुंचेंगे। हम सबका अहम जो आ रहा है वो केवल एक जगह से आ रहा है, वो अलग अलग जगह से नहीं आ रहा है, एक ही जगह से आ रहा है। और वो एक अहम दो किए जैसे दिख रहा है, इसलिए यहां भेद शुरू हो गया है। जैसे अहम आ जाता है भेद दृष्टि आ जाती है, और जब भेद दृष्टि आ गई कि फिर सूक्ष्म भेद, स्थूल भेद और नाना अनंत नाना भेद, सब भेदों को स्वीकारना पड़ता है, सब भेद लेने पड़ते हैं। लेकिन जब ये अहम अपने स्वरूप को जानता है, ये अहम कहां से आ रहा है, ये हमारा मैं कहां से उठ रहा है, ये हमारे मैं के उठने का स्थान एक अखंड ज्योति चैतन्य वही है, और उसके अंदर ये अहम विद्यमान है, और इसलिए उस अहम के आधार पर ही हम सब लोग अहम 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 कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं। लेकिन वो मैं को बिना जाने हम दुर्भाग्य से और अज्ञान के कारण उस मैं का आरोप शरीर पर करते हैं, उस मैं का आरोप मन पर करते हैं, उस मन का आरोप बुद्धि पर करते हैं, लेकिन वो मैं वास्तविक है उसी का। ऐसा जब वो जानता है वहां, तो ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष करके वो जीव चैतन्य को यहां बता रहे हैं। तो आप जब वो जीव चैतन्य तक पहुंच जाते हो तभी समझ जाते हो ये जीव चैतन्य कुछ अलग नहीं है, वो एक ही चैतन्य है। अब तक आप उसको देह इंद्रिय मन इसके दृष्टि से उसको जीवात्मा कह रहे थे, इंद्रिय शरीर के दृष्टि से वो जीवात्मा हो जाता है, मन की दृष्टि से वो जीवात्मा हो जाता है, अन्यथा आप उसमें से जो उपाधियां जो है, इंद्रियों की उपाधियां हटा दो, मन की उपाधि हटा दो, बुद्धि की उपाधि हटा दो, तो जो आपको एक अनुभव होता है वो चैतन्य वो तीनों को जानने वाला। इसलिए जिसने जीवात्मा को देख लिया उसने परमात्मा को देख लिया, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, एक ही है। तो इस प्रकार उन्होंने यहां एक तक लाया, और कैसे भी लास्ट आखिरी का श्लोक उसके बारे में उसकी कुछ विशेषताएं उन्होंने फिर बताई है, यथोदकम शुद्धे शुद्धमासिक्तम तादृगेव भवति, ये करके ये आखिरी का श्लोक बताया है। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार है गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। माने ये जीवात्मा जो है विज्ञानी मुनि, माने जो जानने वाला है, जिसका जानने वाले का जो जीवात्मा आत्मा है, वो कैसे शुद्ध जल में जाने से कुछ भेद दिखेगा नहीं। गंगा जल, एक गंगा जल हमने एक गिलास में गंगा जल लिया और वो गंगा में डाल दिया, कुछ भेद दिखेगा नहीं, क्योंकि वो गंगा जल और गंगा जल वो एक ही है। जो जीवात्मा है वो ही परमात्मा है। दोनों में आपने बहुत, ये वेदांत में इसको बहुत भिन्न भिन्न प्रकार समझाया जाता है, आपको दोनों का शोधन करना है, तत्त्वम तत्पदार्थ उसको दर्शाने के लिए कि तत् का शोधन करो, त्वम पदार्थ का शोधन करो, ये सब शोधन करके आता है वही। तो ये आखिरी श्लोक द्वितीय दूसरे अध्याय के पहले वल्ली का यहाँ समाप्त हो गया। इसकी दूसरी वल्ली और तीसरी वल्ली और भी है, समय बहुत ज्यादा हो गया है। आज हम कठोपनिषद को यही विश्रांति देते हैं। केवल इसका सार जो हमको ग्रहण करना है वो इतना ही कि पहले इंद्रियों का निग्रह करके विवेक के साथ इंद्रियों से ऊपर उठना है। इंद्रियों से जब ऊपर उठते हैं तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, और जैसे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है उससे आप बुद्धि तत्व तक पहुंचते हो। बुद्धि माने बोध, उस बोध तक पहुंचते हो, और उस बोध तक पहुंचने पर ही आप ये बोध, कौन बोध बना है, जो चैतन्य यहां बोध स्वरूप, उसको बोध स्वरूप कहा गया दूसरे उपनिषद में, तो ये बोध स्वरूप वही बना है। और यहां इसका जो वर्णन किया है जीवात्मा की दृष्टि से कि जीवात्मा में वो बोध स्वरूप होकर बैठा है, इसलिए वहां तक आप पहुंच गए तो आपने करीब उसको जान लिया। अब आगे और भी विस्तार किया है लेकिन विस्तार के लिए समय नहीं है। यहां तक भी अगर हम पहुंच गए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ठाकुर को यही प्रार्थना है कि हम लोगों के जीवन में ये सही सही विवेक आ जाए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपने तीन दिन बड़ी शांतिपूर्वक सुन लिया, और महाराज को प्रणाम करके धन्यवाद देता हूँ कि इसकी चर्चा करने के लिए उन्होंने मुझे एक अवसर दिया। महाराज को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। ओम शांति शांति शांति, हरिओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।